आगे सूरत अल अनकबूत है, दुखी दिलों की सूरत। मक्का का वो दौर जब मुसलमानों पर जुल्म और सितम की चक्की चली और मुसलमान उसमें पिस रहे थे। 29 नंबर की सूरह है और इसकी 44 आयतें हम इस बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। रुकू नंबर 13 है, 1-13। राह हक में आजमाइशों का पेश आना लाजिम। अब इस सूरत में आपको बार बार वो जुमला याद रखना है, उसर में यूसर। माल का ताल्लुक सूरत कसस से था ज़्यादा, और उसर और यूसर का ताल्लुक सूरत अनकबूत में। आपको ऐसे लगेगा दुख और तकलीफ़ महसूस होगी उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह के नबी के साथ कदम से कदम बढ़ाया और उनके ऊपर तकलीफ़ें क्या आईं। आइए देखिए, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि इनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए, हम इन्हें बग़ैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा, यकीनन अल्लाह इन्हें भी जांच लेगा जो सच कहते हैं, और इन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं, यानी किन का कलमा सच्चा है और किन का कलमा झूठा। क्या जो लोग बुराइयाँ कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। ये लोग कैसी कैसी बुरी तजवीज़ें कर रहे हैं, जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है, और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक काम किए, हम इनके तमाम गुनाहों को इनसे दूर कर देंगे और इन्हें नेक आमाल के बेहतरीन बदले देंगे। हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ इसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना न मानिए। तुम सबका लौटना मेरी ही तरफ है, फिर मैं हर उस चीज़ से जो तुम करते थे तुम्हें खबरदार कर दूंगा। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए, इन्हें नेक बंदों में शुमार कर लूँगा। और बस लोग ऐसे भी हैं जो ज़ुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है तो लोगों की ईज़ा दही को अल्लाह के अजाब की तरह बना लेते हैं। इस पर ज़रा सा मुहासबा करें। कुछ लोगों को लोगों की बातें दीन से रोक लेती हैं, वो लोगों की बातों को अल्लाह का अजाब समझ लेते हैं। तो अपने आप के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे पीपल प्लीज़र नहीं, अल्लाह प्लीज़र कर दे और रदी अल्लाह अन्हो में शामिल कर दे। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं। क्या दुनिया जहान के सीनों में जो कुछ है इसे अल्लाह नहीं जानता। जो लोग ईमान लाए, अल्लाह इन्हें भी जाहिर करके रहेगा और मुनाफिकों को भी जाहिर करके रहेगा। कुफार ने ईमानदारों से कहा कि तुम हमारी राह की ताबेदारी करो, तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे। झूठ, पक्का झूठ। आज भी लोग ये बोलते हैं, कोई नहीं, आई विल टेक केयर, मेरा नाम ले देना, मुझे पकड़ा देना, वहाँ तो उन्होंने आपको शक्ल नहीं दिखानी। हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने वाले, ये तो महज झूठे हैं। अलबत्ता ये अपने बोझ ढोलेंगे और अपने बोझों के साथ ही और बोझ भी, और जो कुछ झूठ ये बांधते हैं इन सब के बारे में इनसे सवाल जवाब होगा। तो झूठे दावे, झूठी बातें। ये सूरत उस दौर में नाजिल हुई कि अभी किसी घर से बेटा दीन पे आ रहा है, किसी पे बीवी आ रही, और आमतौर पे यूथ यंगस्टर्स और औरतें नबी की दावत से मुतासिर हो रहे थे। तो उसके बारे में एक हदीस भी सुन लीजिए। साद बिन अबी वक़ास कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, लोगों में सबसे ज़्यादा मुसीबत और आजमाइश का शिकार कौन हुए? फरमाए, अंबिया कराम। फिर जो उनके बाद उनके जैसे बंदे की आजमाइश उसके दीन के मुताबिक होती है। अगर वो दीन में सख्त और पुख्ता है तो आजमाइश भी सख्त होगी, और अगर दीन में नरम और ढीला है तो मुसीबत भी इसी अंदाज से नरम होगी। मुसीबतों से बंदे के गुनाहों का कफारा होता रहता है, यहाँ तक कि बंदा रुए ज़मीन पर इस हाल में चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। अल्लाह हमें ऐसा कर दे और आजमाइशों में डाले बगैर ही कर दे, हमसे कोई अच्छा काम ले ले। ये इब्ने माजा की रिवायत है 4023। फिर इसी तरह आयत 6-7 के बारे में इब्ने अब्बास कहते हैं कि यह आयत हज़रत अली और इनके दो साथियों के बारे में नाजिल हुई, जो बदर के दिन अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे थे। तो कहा उसका सवाब उसी को मिलेगा और अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से या उनके जिहाद से बेनियाज है, यानी गनी है। मतलब ये कि अल्लाह दुश्मन को खुद भी हटा सकता है, तुम्हें तो वो ऑनर देता है कि तुम जिहाद करो दुश्मनों से ताकि तुम्हें शहादत मिले या तुम गाजी बनो। फिर आयत 7 में सहाबा कराम पर अल्लाह ताला के इनामात बुराइयाँ मिटा देगा, नेकियों में इजाफा करेगा और बेहतरीन जजा देगा। फिर आयत 8 जिसमें माँ बाप के हकूक की बात हुई है उसके बारे में शान नजूल है अदबुल मुफरत 24 नंबर है कि यह आयत साद रजी अल्लाह अन्हु के बारे में नाजिल हुई। वो कहते हैं कि मेरे बारे में 4 आयतें नाजिल हुई, उनमें से एक ये है जो हम पढ़ के आए हैं। ये इसलिए उतरी कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि साद, क्या अल्लाह का हुक्म मेरे साथ नेकी करने का नहीं? आज भी माएँ कहती है ना, मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, मैं तुम्हें फीडर नहीं बख्शूंगी। तो माएँ हमेशा ब्लैकमेल करती हैं, ये भी याद रखिए, चाहे बूढ़े हो जाएं आप या माँ बूढ़ी हो जाए, सब्र के चुप करके बर्दाश्त कर लीजिए। खैर, क्या कहा कि मेरे साथ नेकी का हुक्म नहीं दिया? अगर तूने नबी सल्लम की नबूवत से इनकार ना किया तो वल्लाह ही मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। चुनाचे उसने यही किया, यहाँ तक कि लोग ज़बरदस्ती उसका मुंह खोल कर गिजा हलक में पहुँचा देते। उस पे यह आयत उतरी थी जा हदा वाली के माँ बाप भी अगर मजबूर करें तो शिर्क नहीं करना। फिर आयत नंबर 11 में आजमाइशों की बात थी, तो अल्लाह आजमाता है क्यों? लोग कहते हैं मेरे पे इतनी आजमाइशें क्यों? वाई मी, तो नोट कीजिएगा, इसलिए कि जो गमी और खुशी में इताअत करेगा वो मोमिन है। अल्लाह आजमाइशों में डाल के हमारे ईमान और निफाक में तमीज़ करता है, और जो सिर्फ अपने नफ्स का मती हो गया वो मुनाफिक है, और अल्लाह की सुन्नत है कि पाक को नापाक से जुदा करता है। तो आजमाइशों में छांटी होती है, सिलेक्शन, ये ठीक है इसको ऊपर अपग्रेड में रख दो, ये बड़ा महंगा है, और ये कच्चा पक्का टूटा चलो इसको सस्ता सस्ता बेच देना। सब्जी वाला फल वाला भी यही करता है और फिर वो सस्ते बिक जाते हैं। अल्लाह हमें महंगा कर दे और आजमाइशों में डाले बगैर, और अगर आजमाइशें डाली हैं तो इस्तकामत के साथ अपने काम का बना ले। क्या सीखा? सच कहना है, अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद रखनी है, अल्लाह की राह में कोशिश करनी है, दूसरों की खताओं का बोझ उठाने का झांसा नहीं देना। किसी के फ्रॉड में मत आइएगा, भाग जाएंगे उस दिन, ऐसे ही भागेंगे जैसे वो नकली चूड़ियाँ दे के असली बनाने वाले भाग जाते हैं। वालदैन के साथ हुस्ने सलूक करना है और नेक अमल करना है। आगे अम्बिया कराम के किस्से आए 14 से 22, रुकू 14। रसूल की जिम्मेदारी इबलागे दीन। वलकद अरसलना नूहन इला कौमी, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम की तरफ भेजा और वो इनमें 950 साल तक रहे, फिर तो इन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वो थे भी जालिम। फिर हमने इन्हें और कश्ती वालों को निजात दी, और इस वाक़े को हमने तमाम जहान वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और इससे डरते रहो, अगर तुम में दानाई है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम तो अल्लाह के सिवा बुतों की पूजा पाठ कर रहे हो और झूठी बातें दिल से घड़ लेते हो। सुनो, जिन जिन की तुम अल्लाह के सिवा पूजा पाठ कर रहे हो वो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं, बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ही से रोजियां तलब करो और इसी की इबादत करो और इसी की शुक्रगुजारी करो और इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे, और अगर तुम झुटलाओ तो तुमसे पहली उम्मतों ने भी झुटलाया। रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ तौर पर पहुंचा देना ही है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तिदा किस तरह अल्लाह ने की, फिर उसको दोहराएगा यानी इयादा करेगा, और ये तो अल्लाह पर बहुत ही आसान है। कह दीजिए कि ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह ने इब्तदान पैदाइश की, फिर अल्लाह ताला ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, जिसे चाहे अजाब करे, जिस पर चाहे रहम करे। तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे, तुम ना ज़मीन में अल्लाह को आजिज़ कर सकते हो ना आसमान में, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई वाली और मददगार नहीं। क्या सीखा? आजमाइशों में सब्र करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से डर के रहना, ज़मीन में चलकर अल्लाह की तख्लीक के बारे में जानना, रसूल को नहीं झुठलाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना। आगे 23 से 30, रुकू 15। कुफार का अजाब के लिए जल्दी मचाना। वल्लज़ीना कफरू बिआयातिल्लाह, जो लोग अल्लाह की आयतों और इसकी मुलाकात को भुलाते हैं वो मेरी रहमत से नाउमीद हो चुके हैं, और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी कौम का जवाब बजुज इसके कुछ न था कि कहने लगे कि इसे मार डालो या जला डालो। आखिर अल्लाह ताला ने इन्हें आग से बचा लिया। इसमें ईमानदार लोगों के लिए तो बहुत सी निशानियां हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने जिन बुतों की परस्तिश अल्लाह के सिवा की है, इन्हें तुमने अपनी आपस की दुनियावी दोस्ती की बिना पर ठहरा लिया है। तुम सब क़यामत के दिन एक दूसरे से कुफर करने लगोगे और एक दूसरे पर लानत करोगे, और तुम सब का ठिकाना दोजख होगा और तुम्हारा कोई मददगार ना होगा। बस जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर लूत अलैहिस्सलाम ईमान ले आए और कहने लगे, मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन। ये बहुत बड़ा मुकाम होता है जो किसी की ज़िंदगी में आ जाए तो क्या होगा। वो बड़ा ही गालिब और हकीम है। और हमने इब्राहिम को इसहाक याकूब अता किए, नोट किए उस सर में, समझ आ भी रहा है कि नहीं। जहाँ भी हिजरत की बात है या कुर्बानियों की आग में डाले जाने की बात है ना, वहाँ साथ ही बेटे और बेटे के बाद पोते और नबूवत की बात है, तो उसर में युसर है। और हमने इब्राहिम को इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम अता की, और हमने नबूवत और किताब इनकी औलाद में कर दी, और हमने दुनिया में भी उन्हें सवाब दिया, और आखरत में तो सालेह लोगों में से हैं। और हज़रत लूत का भी जिक्र कीजिए, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम बदकारी पर उतर आए हो, जिसे तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने नहीं किया। क्या तुम मर्दों के साथ बदफेली के लिए आते हो और रास्ते बंद करते हो और अपनी आम मजलिसों में बेहयाइयों का काम करते हो? इसके जवाब में इसकी कौम ने सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा, बस जा, अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह का अजाब ले आ। हज़रत लूत ने दुआ की कि परवरदिगार इस मुफसिद कौम पर मेरी मदद फरमा। फ़ैन्ना मालू सरी उसरा। आज भी अगर इसको ना रोका तो वो वक्त जो उन कौम लूत पे भी नहीं आया था, वो आज की इंसानियत पे आ रहा है। आप देखिए कि नफ्स की गुलामी, पहले औरत मर्द की कशिश के नाम पे बगैर शादी के ताल्लुक कायम हुए, दिल भर गया। आगे बढ़ते बढ़ते जो इस वक्त की कहानी है, अगर इसको भी ज़रा सा आगे बढ़ें, शहवानियत इतनी छा चुकी है जहनों दिलों दिमागों पे कि घर के मुलाजिमों से बच्चे महफूज नहीं। पहले बेटियों की फिक्र थी, अब बेटों की कीजिए। कब्रों में मुर्दे नहीं बच रहे, नबीना बच्चियाँ नहीं बच रही। टेक केयरर उनकी जात जो करते हैं, बच्चे चंद महीनों की बच्चियाँ नहीं बच रही, साल की बच्ची नहीं बच रही। तो आपने और अपने बच्चों की हिदायत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इस उसर को युसर में बदल दे, ये गंदगी और बेहूदगी का तूफान उतर जाए। फिर आप देखिए कि I-23 क़यामत आने का मकसद क्या है। इसमें अल्लाह के अदल की कहानी है, दुनिया में किए हुए अमाल के बदले का ये दिन होगा, और अल्लाह को ना मानने वालों के लिए ये यकीन का दिन होगा कि आज यकीन आ गया ना। क्या सीखा? अल्लाह की मुलाकात का इनकार नहीं करना, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, बुतों को यानी बुतनुमा चीज़ें यानी मादा परस्ती की चीज़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को अपने दरमियान मोहब्बत का ज़रिया नहीं बनाना। कभी किसी की चीज़ों की वजह से उससे मोहब्बत ना करें, हाँ उसके किरदार और अख्लाक को देखिए। सच्चे लोगों में से होना है, बेहयाई के काम नहीं करने, नेक लोगों में से होना है। और आयत 31 से 44 इस बारे में आखिरी रुकू इस सूरत का, हालांकि ये अगले पारे में कंटिन्यू होगी, रुकू 16। और यहाँ आपको टॉपिक भी मिलेगा कि ये सूरत अनकबूत क्यों है। गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले, वलम्मा जात रुसुलुना इब्राहिम। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुँचे, तो कहने लगे कि इस बस्ती वालों को हम हलाक करने वाले हैं, यकीनन यहाँ के रहने वाले गुनाहगार हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसमें तो लूत भी हैं। फरिश्तों ने कहा, यहाँ जो हैं हम इन्हें बखूबी जानते हैं, यानी रौनत का शिकार हुए। लूत अलैहिस्सलाम को और इनके ख़ानदान को सिवाय इनकी बीवी के हम बचा लेंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रह जाने वालों में से है, यानी शौहर का साथ भी उसके काम नहीं आया। फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो इनकी वजह से गमगीन हो गए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा, आप ना खौफ खाइए ना जुर्दा हों, हम आपको बिमा आपके मुतल्लिकीन के बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी के वो अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों को आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं इस वजह से कि ये बेहुक्म हो रहे हैं। अलबत्ता हमने इस बस्ती को बिल्कुल निशाने इबरत बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। क्या फसाद था? माली बिगाड़, नहीं नहीं का शिकार थे। एक डंडी मारी, किलो में से एक छटांक, किलो में से कोई आधा किलो तो नहीं चोरी कर सकता ना। तो लिखिए, ए अपने हैं को नहीं में बदल रहे थे, साहबा ने नहीं को है में किया। एहसान क्या होता है? दर्जन 12 का नहीं 13 का, किलो किलो का नहीं 1.25 किलो का। ये कौमें डंडियां मारकर क्यामत तक के लिए निशाने इबरत बन गई। अल्लाह हमें ऐसी हक तलफियों से बचा दे। ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क्यामत के दिन की तवक्को रखो और ज़मीन में फसाद ना करते फिरो। फिर भी उन्होंने इनको झुटलाया, आखिरकार इन्हें जलजले ने पकड़ लिया और वह अपने घरों में बैठे के बैठे मुर्दा होकर रह गए। और हमने आदियों और समूदियों को भी गारत किया, जिनके बास मकानात तुम्हारे सामने जाहिर हैं, और शैतान ने इन्हें इनकी बदअमालियाँ रास्ता करके दिखाई थी और इन्हें राह से रोक दिया था, बावजूद इसके कि आँखों वाले और होशियार थे। और कारून और फिरौन और हामान को भी, इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम खुले खुले मौजज़े लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने ज़मीन में तकबर किया, लेकिन हम से आगे बढ़ने वाले न हो सके। तो फिर हर एक को हमने इसके गुनाहों के बवाल में गिरफ्तार कर लिया। इनमें से बाज पर हमने पत्थरों का मीह बरसाया और बाज को ज़ोरदार सख्त आवाज़ ने दबोच लिया, और इनमें से बाज को हमने ज़मीन में धंसा दिया और इनमें से बाज को हमने डबो दिया। अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि इन पर जुल्म करे, बल्कि यही लोग अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा और कारसाज़ मुकर्रर कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बना लेती है, हालांकि तमाम घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर है। काश वो जान लेते। अल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं। वो ज़बरदस्त और जी हिकमत है। हमने मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा दिया, इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया, ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलील है। तो गैर अल्लाह के सहारे, मकड़ी के जाले, ये वेब है। आज वेबसाइट, नेट और ABCDC, ये सब गैर अल्लाह के सहारे हैं। दोनों कमज़ोर, ज़रा सी तेज़ हवा में दोनों टूट जाते हैं, किसी को सहारा देने से कासिर है। आप देखिए कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है मकड़ी का घर, लेकिन अंदर उसके पायदारी नहीं। इसी तरह गैर अल्लाह खूबसूरत लगता है, ऐसे दर, ऐसी जगह बड़ी रौनक वाली होती हैं, लेकिन जहाँ जाकर उसर युसर में नहीं बदलता। वो कहाँ बदलेगा? वस्जुद वक्तरिब। सीखा क्या? गैर अल्लाह पे नजरें नहीं लगानी, अक्ल से काम लेना है, आखरत के दिन की उम्मीद रखनी है, ज़मीन में फसाद नहीं मचाना, अपनी जानों पे जुल्म नहीं करना, बुरे अमाल को खुशनुमा नहीं समझना और राहे रास्त से नहीं रुकना, यानी चलते ही जाना है अपने काम पे आगे से आगे। पारा पूरा होता है इधर। पारे का पैगाम क्या है? अल्लाह ही सबसे मजबूत सहारा और मालिक है। खौफ और परेशानी से बचाने वाला अल्लाह ताला, किबर और खुद नुमाई से बचना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। सूरत अनकबूत आगे पारे में कंटिन्यू होती है, हम भी कंटिन्यू करेंगे। उतलु माओखिया 21वां पारा है, और इसमें साहबा की खूबी, उसर में युसर को हम देखते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे सूरत में। अगली सूरत में थीम बदल जाएगा कुछ ना कुछ। और इसकी दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुभान अल्लाह व तबारक अल्लाह रब्बुल अर्शिल अजीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तकलीफ़ या मुसीबत आने की ये दुआ है, और दीन की तकलीफ़ें हों, मुसीबतें हों, उसर हो, युसर हो, हर हाल में इन दुआओं को मांगते रहिए। मुस्तद अहमद की ये रिवायत है 701। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बड़ा बुरदबार और मेहरबान है। अल्लाह ताला हर ऐब और नक्स से पाक है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, बाबरकत है, वर्शे अजीम का रब है, और तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। सूरत अनकबूत की आयत 45 से शुरू होता है ये पारा, और 69 ये पूरी सूरत भी आती है। फिर इसमें सूरत रोम पूरी है, सूरत लुकमान पूरी है, और फिर सूरत सजदा भी इसी में आती है। चलिए शुरू करते हैं। आउसु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रुकू नंबर 1, आयत 45 से 51। अजमते कुरान और सदाकते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब। जो किताब आपकी तरह वही की गई है उसे पढ़िए और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ी चीज़ है। जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला खबरदार है। और अहले किताब के साथ बहस और मुबासा न करो मगर इस तरीके पर जो उम्दा हो, मगर इनमें से जो भी जालिम है, और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई, और इस पर भी जो तुम पर उतारी गई। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब इसी के हुक्म बरदार हैं। हमने इसी तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई, बस जिन्हें हमने किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन मुशरिकीन में से बाज़ इस पर ईमान रखते हैं और हमारी आयतों का इनकार काफिरी करते हैं। इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़ते भी ना थे और न किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे कि ये बातिल परस्त लोग शक और शुबे में पढ़ते, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयते हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। हमारी आयतों का इनकार करने वाला यानी मुनकर सिवाय जालिमों के और कोई नहीं। उन्होंने कहा, इस पर कुछ निशानियां यानी मोजजात इसके रब की तरफ से क्यों ना उतारे गए? आप कह दीजिए कि निशानियां तो सब अल्लाह के पास हैं, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। क्या इन्हें ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई जो इन पर पढ़ी जाती है, और इसमें रहमत भी है और नसीहत भी इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बड़ी खूबसूरत सूरत है। शुरू में ही नमाज की बात है, कुरान की बात है, तो नमाज के 8 फवाद आपके सामने हैं। नंबर 1, ताल्लुक बिल्लाह मजबूत होता है, अल्लाह के कुर्ब का जरिया है, बेहयाई और बुराई से रोकती है, शौरी बेदारी है इसमें, जवाबदेही का एहसास दिलाती है, अल्लाह के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस है, गुनाहों के मिटने का जरिया है, और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने में आसानी होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स ऐसी नमाज पढ़े जो इसे फहाशी और मुनकरात से ना रोके, तो ऐसी नमाज से मां सिवाय इसके कि अल्लाह से दूर हो जाए और कोई मुफाद ना पाएगा। इन्ना लिल्लाह, ये मुत्तफिक हदीस है बुखारी मुस्लिम की। अल्लाह हमें अपनी नमाजों की फिक्र लगा दे। नमाज पढ़ के नहीं बुराई से बदले, तो ये वही हाल है कि शावर भी लेके गंदे हैं, खाकर भी भूखे हैं, सोने के बाद फिर आपको नींद आ रही है। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। इसी तरह से अबू हुरैरा से एक रिवायत से ही बुखारी में 299 है कि जमात की नमाज अपने घर की नमाज और बाजार की नमाज से 25 दर्जे सवाब में फोकियत रखती है। इसलिए जब तुम में से कोई अच्छा वजू करे और मस्जिद में महज नमाज ही के इरादे से आए, तो वो जो कदम रखता है इस पर अल्लाह इसका एक दर्जा बुलंद करता है और एक गुनाह माफ़ कर देता है। यहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल होता है तो नमाज में समझा जाता है, जब तक कि नमाज इसे रोके और फरिश्ते इसके लिए दुआ करते रहते हैं जबकि वो इस मुकाम पर रहे जहाँ नमाज पढ़ता है। फरिश्ते यूँ दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह इस पर रहम कर दे। ये दुआ इस वक्त तक जारी रहती है जब तक वो बेवुजू ना रहे। रुकिए ज़रा, कौन सी दौलत कमाने के पीछे हिलकान हो रहे हैं और ये कौन सी दौलत है? तो कहिए कि हमने अपनी नमाजों के लिए, अपने कारोबार और अपने माल कमाने के लिए नमाजें नहीं छोड़नी। सहाबा ने जो माल कमाए थे वो नमाजें छोड़ छोड़ कर नहीं, नमाजें पढ़ पढ़ कर हासिल किए थे। इसी तरह से एक रिवायत मिलती है 46 आयत के ऊपर, बुखारी की रिवायत है 4485। अबू हुरैरा ने फरमाया, रावी है ये, कहले किताब तो रात को खुद इब्रानी जुबान में पढ़ते हैं लेकिन मुसलमानों के लिए इसकी तफसीर अरबी में करते हैं। इस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अहले किताब की न तस्दीक करो न तकजीब, बल्कि ये कहा करो कि आमन्ना बिल्लाही व मा उन्जिला इलैना। फिर इसके बाद आपके मेरे अमल के नुक्ते हैं, किताब की तिलावत करनी है, बेहयाई और बुरे कामों से रुकना है, नमाज कायम करनी है, अल्लाह की फरमा बरदारी करनी है, इल्म रखना है और अल्लाह का जिक्र करना है, और अल्लाह में इसकी तौफीक दे। आगे है जी आयत नंबर 63 से 52, रुकू नंबर 2, हक को जुटलाने वालों का बदतरीन इंजाम। कुल कफा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा, कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह का गवाह होना काफ़ी है, वो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का आलिम है। जो लोग बातिल के मानने वाले और अल्लाह से कुफर करने वाले हैं वो ज़बरदस्त नुकसान और घाटे में हैं। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं, अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी तक इन पर अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अजाब आ पहुँचे। ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं और तसल्ली रखे हैं। जहन्नम कुफार को घेर लेने वाली है, उस दिन इनके ऊपर तले से इन्हें अजाब ढांक लेगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि अपने बुरे आमाल का मजा चखो। ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी जमीन बहुत कुशादा है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। हर जानदार मौत का जायका चखने वाला है और तुम सब मेरी ही तरफ लौटाए जाओगे। क्या पता चला कि इसमें अल्लाह ताला ने मौत की बात करके हिजरत के रास्ते आसान कर दिए। बहुत सारे लोग माल कमाने कमाने में दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन नाफरमानी की जगहों से कुछ नहीं करते। तो क्या आप चाहते हैं आपकी डेड बॉडी पकसन जाए? ये सवाल है बाहर रहने वालों के लिए। मशीनें बन के सारी उम्र काम किया, इंतकाल पुर मलाल भी उधर हुआ, और डेड बॉडी को लाकर इधर दफनाते हैं ताकि लोग देखें। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा दे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए, इन्हें यकीनन जन्नत के इन बाला खानों में जगह देंगे जिनके नीचे चश्मे बह रहे हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। नेक काम करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं रखते, फिर इन सब को और तुम्हें भी अल्लाह ही रोज़ी देता है, वो बड़ा ही सुनने वाला और जानने वाला है। और अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमान और ज़मीन का खालिक और सूरज और चांद को काम में लगाने वाला कौन है, तो इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला। तो फिर पूछो कि किधर उल्टे फिराए जा रहे हो। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। अगर आप इनसे सवाल करें कि आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद जिंदा किसने किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला ने। आप कह दें कि हर तारीफ अल्लाह ही के लिए लायक है, लेकिन इनमें से अक्सर बेअक़ल हैं। कौन कह रहा है बेअक़ल? अल्लाह ताला कह रहा है, तो सच होगा ना। फिर आप देखिए कि आयत 55 में एक हदीस है, आपने फरमाया तुम्हारी ये आग जो बनी आदम जलाते हैं, हरारत यानी टेम्परेचर में जहन्नम की आग से 70वां हिस्सा यानी 70th पार्ट। लोगों ने कहा अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगारों के अजाब के लिए तो ये हमारी दुनिया की आग भी बहुत थी। आपने फरमाया, जवाब क्या दिया, जहन्नम की आग इस दुनिया की आग से 69 यानी 69 दर्जे ज़्यादा है, और इनमें से हर हर दर्जा हरारत में इसी के मिसल है। ये मुत्तफिक अल हदीस नंबर 14 है। तफसीर इब्ने अब्बास में इस आयत की तफसीर में आता है, मेरे ईमानदार बंदो, यानि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और सारे दीगर साहबा कराम, सर ज़मीन मदीना अमन वाली है, वहाँ चले जाओ और खालिस मेरी ही इबादत करो। साहबा कराम की कुछ काबिल तकलीद खूबियाँ इन आयात में 58-59 में, ईमान लाना है, अमल सवाले करना है, सब्र करना है और तवक्कुल अल्लाह करना है। अब देखिए यहाँ सवालात थे, कौन है जो मुर्दा ज़मीन पे बारिश बरसाकर उसे सरसब्ज करता है? क्या जवाब देंगे? अल्लाह। करें क्या? फिर उसकी इबादत करें, नेक अमल करने हैं, सब्र करना है, रब पे भरोसा करना है, बातिल पर ईमान नहीं लाना और शऊर रखना है, अल्लाह में बेशौरेपन से बचाए। आगे 64 से 69 सूरत अनकबूत का आखिरी रुकू है, आखरत की ज़िंदगी। ममा हाजिहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन व लईब, और दुनिया की ये जिंदगानी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्त आखरत के घर की ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है, काश ये जानते होते। बस ये लोग जब कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह ही को पुकारते हैं और उसके लिए इबादत को खालिस करके, जबकि वो इन्हें खुशकी की तरह बचा लाता है, तो इसी वक्त शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारी दी हुई नेमतों से मुकरते रहें और बरतते रहें। अभी अभी पता चल जाएगा, क्या ये नहीं देखते कि हरम को बामन बना दिया, हालांकि इनके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं? क्या ये बातिल पर तो यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों पर नाशुक्री करते हैं? इससे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या जब हक इसके पास आ जाए तो इसे जुटलाए? कैसे कुफार का ठिकाना जहन्नम ना होगा? आप नोट करें कि सूरत में सवाल है, जवाब कोई नहीं है, तुम पूछो, तुम बताओ, यानी सोल सर्चिंग क्वेश्चंस। और आखिरी आयत देखिए, पहली आयत याद अगर तो उससे रिलेट कर लें, अहसिबन्ना से युत्रकु अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। और आखिरी आयत वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जो लोग हमारी राह में मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं हम इन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखा देंगे। यकीनन अल्लाह नेकुकारों का साथी है। ढूंढने वालों को क्या करते दुनिया नहीं देते हैं। फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, ये है सहाबा ने इस बात पे यकीन रखा था। इस आयत में लफ्ज़ मुहसिनीन को नोट कीजिएगा। कौन होते हैं मुहसिनीन? सहाबा कराम थे मुहसिन। अल्लाह की राह में सख्तियाँ उठाने वालों को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नूरे बसीरत अता होता है। जो लोग हिदायत पा लेते हैं अल्लाह इनकी हिदायत में इजाफा कर देता है। नेक लोगों को अल्लाह अपने रास्ते की बसीरत अता फरमाता है। अल्लाह ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की हिमायत और नुसरत नेकी करने वालों के साथ है। आपको मुझे मुहसिना बनना है, अल्लाह के दीन को खालिस करना है, उसकी खातिर मुशक्क़त सहनी है, नेक बनना है, शिर्क नहीं करना, नाशुक्री नहीं करनी, हक को नहीं झुटलाना, और अपना मुहासबा भी करते जाएं। इस सूरत के एंड पे क्या मेरी नमाज ऐसी है जो मुझे गलत कामों से रोकती है? इन सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, 21वें पारे के शुरू की आयत। क्या मैं कुरान का कुछ हिस्सा अपने सीने में महफूज रखने का शौक़ रखती हूँ? अल्लाह ने उस सीने में आग को हराम किया है। अल्लाह हमें पढ़ने और याद रखने वाला बना दे। तर्जुमा भी याद करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके सीने की हिफाजत करेगा। क्या मेरा कुरान पढ़ने का मकसद नसीहत हासिल करना है या सिर्फ पारा पूरा करना? क्या दीन के लिए मैंने कभी मुशक्कतें उठाई हैं? वल्लाही कभी मुश्किल आई नहीं। अराइवगी भी तो महसूस ही नहीं होगी। इतना खूबसूरत है ये अल्लाह के रास्ते का सफ़र। अल्लाह आपको मुझे इस पे चला ले। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।